आप सुन रहे हैं खाना बदोशी सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अजात यायावर के साथ।
बात उन दिनों की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नातक। बीएससी कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है अच्छे खासे मार्क्स से। बहरहाल तो मैं बीएससी कर रहा था और जब कॉलेज में पहले साल आया, फर्स्ट ईयर जिसको बोलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, तो कहा गया कि भाई आपको या तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर वो लेनी पड़ेगी इसके साथ में, कोर्स के साथ में, या एक शायद उसको एनएसएस ऐसा कुछ बोलते थे जिसमें वो तब बच्चों को कहीं गांव में ले जाके कुछ काम गाइड टाइप कुछ कोर्स था, वो कुछ करना था। तो मैंने एनसीसी ले लिया। एनसीसी में भी इन्फेंट्री ले लिया, पैदल सेना जो होती है ना। वो करते करते साहब दूसरा साल हुआ तो एक कैंप के लिए, गर्मी में कैंप होता है आर्मी अटैचमेंट कैंप, उसके लिए टेस्ट हुए, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। उन कैंप में हमको आर्मी के साथ इंडो चाइना बॉर्डर, यानी टेक्निकल अगर उस लिहाज से देखें तो इंडो टिबेट बॉर्डर पे जाना था। तो उसकी तैयारी होनी थी, समर वेकेशंस यानी कि गर्मी की छुट्टियां लग चुकी थी, एग्जाम्स हमारी हो चुकी थी उस साल की, तो तैयारी करवानी थी। वहाँ ठंड बहुत थी, ग्लेशियर पे जाना था, और यहाँ हमारे कॉलेज में गर्मी, जिस शहर में मैं हमारा कॉलेज था वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी। तो हमें उसके लिए तैयार किया जा रहा था। रोज़ हमारी ट्रेनिंग होती थी आर्मी ग्राउंड पे। रहने का था तो हॉस्टल में ही हमारे डीन सर थे, उनसे कहा कि सर मैं कैंप जा रहा हूँ तो मुझे रहना, ठीक है रहो। बाकी सारे बच्चे तो अपने घर चले गए थे गर्मी की छुट्टियों में। मैं वहाँ था, बड़ा कैंपस था हमारे कॉलेज का, और उस कैंपस में ही हमारे हॉस्टल थे और अलग अलग ब्लॉक्स थे, अलग अलग नाम थे उन ब्लॉक्स के। किसी को न्यू ब्लॉक बोलते थे, कोई रिसर्च ब्लॉक था, कोई गंभीर ब्लॉक था, कोई मिडिल ब्लॉक था। तो मैं रिसर्च ब्लॉक में रहता था। सर ने परमिशन दे दी, रहने लगा। रोज़ सुबह उठ के जाते साइकिल लेके आर्मी ग्राउंड पे, वहाँ आर्मी के लोग हमें ट्रेनिंग देते, हमारी तैयारियाँ करवाते। शाम को आते, एक सरदार जी का ढाबा था, वहाँ खाना खा के मस्त सो जाता। अकेला था, बियाबान, बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत ह्यूज, बड़े बड़े दरख्त, उसी में कुआं, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड, एक बड़ा सुनसान इलाका हो जाता था वो रात को, दिन में भी, क्योंकि इतने बच्चे हॉस्टल में रहते थे, सब घर चले गए थे, मैं अकेला वहाँ था। और एक वहाँ चौकीदार बाबा रहते थे, बाबा ही कहूँगा उनको, बड़े प्यारे इंसान थे, खुशीलाल नाम था उनका। तो खुशीलाल दादा वहाँ रहते थे, वो अपनी खटिया डाल के सो जाते थे। गर्मियों के दिन थे, गर्मी बहुत पड़ती थी। यूँ तो हमारे हॉस्टल में मेस थी खाना खाने के, लेकिन चूंकि बच्चे चले गए थे तो मेस बंद हो गई थी। तो मैं अक्सर उस ढाबे पे खाना खाता था और आ जाता था। एक रात की बात है कि मैं आया, गर्मी बहुत हो रही थी, तो गया और जो हमारे कैंपस के अंदर ही कुआं था वहां से बाल्टियों से पानी निकाला और खूब नहाया। रात को करीब 10-10:30 बज गए होंगे और चला गया अपने रूम में। मेरा एक छोटा सा रूम था। रूम क्या थे, वो उस जमाने में राजा महाराजाओं की के वो का जो पैलेसेस था वो शायद उन्होंने डोनेट वोनेट कर दिया होगा, तो बच्चों के हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया था। तो इतना बड़ा एक रूम होता था जिसमें एक कॉट आ जाती थी और एक छोटी सी अलमीरा जिसमें शेल्फ जिसमें कपड़े वगैरह और एक खाट जिसपे आपका बिस्तर सोना है। मेरा कॉर्नर का रूम था जिसमें दोनों तरफ खिड़कियाँ थीं। चूंकि गर्मियों के दिन थे तो मैं वो दोनों खिड़कियाँ खोल के और सोता था। उस रात भी मैं गया और अच्छा, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का रेफरेंस आगे आएगा। घर पर जब छोटे थे तो दादी हमेशा कहा करती थी कि बेटा नहाने के बाद कुछ भी मुंह में डाल लिया करो, अन्न का दाना कुछ भी मुंह में, एकदम वैसे ही नहीं रहते हैं, भूत लग जाते हैं, परियां आ जाती हैं। बच्चे थे, सही समझते थे। फिर कॉलेज में आए, साइंस पढ़ने लगे, सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगे, तो लगता था कि अरे क्या सारी बातें हैं। खैर, इस बात का रेफरेंस आ गया। तो मैं आया उस दिन और नहा के सो गया, दोनों खिड़कियाँ खोल दी। मेरे जो कमरे का दरवाज़ा था वो दो पल्लों वाला था, जिसको बोलते ना टू लीफलेट, दो पल्ले थे दरवाजे के जो खुलते थे। एक हमेशा मैं बंद रखता था, उस पर कुंडी चढ़ी रहती थी, और एक खोल के, फाटक खोल के आना जाना होता था। उस रात भी मैं आया साहब, नहा के, बड़ा नहाया आधे घंटे गर्मी में, और मैं सो गया। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, कितनी रात गई पता नहीं। अचानक ऐसा लगा तंद्रा टूटी, नींद टूटी। आंख खुली, देखा कोई पास में खड़ा है, कोई साया। हिलने की कोशिश की लेकिन शरीर ने रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। न हाथ हिल रहे हैं, न मुंह से कोई आवाज निकल रही है, उंगलियां तक नहीं हिल पा रही हैं। मैं जग रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर मेरे ही दिमाग की बात नहीं मान रहा है। जग रहा हूं लेकिन न हाथ हिला पा रहा हूं, न उंगली हिला पा रहा हूं, न मैं पलके भी नहीं झमका पा रहा हूं। देखा तो सामने जो साया था वो एक औरत का था। घूंघट डला हुआ था उसके सिर पे, चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन लिबास में वो औरत थी। डरा साहब, पसीने छूटने लगे लेकिन शरीर ने हरकत करने से मना कर दिया। कोई चारा था ही नहीं मेरे पास। धीरे धीरे उस औरत ने अपना घूंघट उठाया। साहब, बला की खूबसूरत, बला की खूबसूरत, एकदम जैसे कहते ना चौदहवीं का चांद। खड़ी हो गई, मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रही है, और मेरी कहते ना सिट्टी पिट्टी गुम। धीरे धीरे वो अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरफ लाई। मैं और घबराने लगा लेकिन कर तो कुछ नहीं सकता था। उसने अपने होंठ मेरे होंठों की ओर बढ़ाए। उसकी सांसों की गर्मी मैं अपने होंठों पे महसूस कर सकता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि बस वो मुझे चूमने जा रही है और किसी अदृश्य हाथ ने उसके चेहरे पे जोर का तमाचा मारा हो और वो एक तरफ हो गया उसका चेहरा। उसको एक क्षण के लिए लगा उसके चेहरे पे गुस्सा आया लेकिन फिर मुस्कुराई, फिर उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया, अपने होंठ मेरे होंठों पे रखने की कोशिश की लेकिन लगता फिर कोई अदृश्य हाथ उसके चेहरे को एक तरफ कर रहा था। बार बार वो कोशिश करे कि उसके होंठ उसके गर्म सांसें मैं अपने पे महसूस कर रहा था अपने चेहरे पे। बार बार वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने होंठ मेरे होंठों पे रख दे लेकिन पता नहीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य हाथ बार बार उसके चेहरे को वहां से हटा देता था। When she was about to kiss on my lips, जब वो चुम्बन लेने को एकदम करीब आती थी तभी लगता था कोई अदृश्य शक्ति उसका चेहरा हटा देती है। चार पांच बार उसने कोशिश की, जब नाकाम रही तो पीछे हटी और एक जोर की सांस ली और अगला मंजर जो मैंने देखा, सूसू निकल गई। मतलब जो औरत थोड़ी सी देर पहले बला की खूबसूरत सुंदर थी, वो अब बला की विकराल, खतरनाक, डरावनी बन गई। बाल सारे उसके सर के खड़े हो गए। इमेजिन, 3 फुट के, 1 मीटर के बाल अगर सीधे खड़े हो जाएं किसी औरत के तो कैसा उसका चेहरा लगेगा, विकराल सा चेहरा। मेरी सुसू निकल गई साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। और ऐसे करके ऐसी खतरनाक नजरों से उसने मेरी तरफ देखा और चली गई। पता नहीं कितनी बार सुसू निकली होगी मेरी लेकिन हिल नहीं पा रहा था, पसीने में तर बतर। पता नहीं फिर कितना वक्त गुजरा लेकिन उसके बाद शरीर में हरकत आई, हाथ हिले, गर्दन हिली, उंगलियां हिली, पांव हिले। अचानक उठ के बिस्तर पे बैठा, देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। भागा वहां से बदहवास सा, भाग के सीधा सड़क पे आ गया, मेन रोड पे। हमारे कॉलेज का जो कैंपस था उसके बाहर से एक रोड निकलती थी, एबी रोड बोलते हैं उसको, आगरा बॉम्बे रोड, NH3। वहां आ गए साहब, और वहां के वो जो पीले कलर की लाइट होती ना, सोडियम लैम्प या हेलोजन लैम्प क्या बोलते हैं उसको, वो जल रहा था। उसके नीचे खड़ा हो गया पसीने में तर बतर। अचानक बेचारे शायद खुशहाल बाबा की नींद खुली, दौड़ते दौड़ते आया पीछे, देखा कि बच्चा पसीने में नहाया हुआ है। बेटा क्या हुआ? मैंने कहा बाबा वो नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। उन बूढ़ी आंखों में इतना तजुर्बा था, इतना अनुभव था जिंदगी का कि शायद वो समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, कोई सुपरनेचुरल चीज हुई होगी ऐसा उनको लगा। हाथ पकड़ा, घबरा मत बेटे। धीरे धीरे लाए, बिठाया, दरवाजे का रूम खुला हुआ था। मैंने कहा बाबा मैं एक फाटक तो, एक दरवाजे का एक पल्ला तो हमेशा बंद रखता था, अगर मैं मान लो भूल भी गया कि मैंने लगाया नहीं तो ये भी कैसे खुल गया, ये कैसे खुल गया, एक ही खुलता ना, और मेरे कमरे में कौन आएगा रात को, कोई चोरी वाली बात भी नहीं है। हुआ क्या बेटा? तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा कोई वहम है, मतलब मैंने कोई सपना देखा, मैं डर गया, तो एक डर के भूत बन जाते हैं ना, मेरी कल्पना ने कोई बना दिया। और तो मैंने उनको बताया नहीं, वो फिर मुझे उसी कुएं पे लाए, कहा बेटा नहा लो, क्योंकि पसीने में तर बतर था। मैं नहा लिया, इसके बाद बोले कपड़े पहन लो बेटा। वो मुझे अपने रूम तक छोड़ने आए, कहा बेटा मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं 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 आप, बोले नहीं मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही सोता हूँ। मैंने कहा आप अंदर सो जाइए, लेकिन अंदर इतनी जगह नहीं थी कि दो आदमी सो सके। बोले नहीं बाहर सोता हूँ। मैं कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, हालांकि बहुत डर लग रहा था, सुसु कर लिया था, लेकिन ऊपर से बोल रहा था चिंता मत कीजिए। तो साहब बिठा दिया उन्होंने और अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ भुने हुए चने, है ना, भुंगड़े बोलते जिनको, भुने हुए रोस्टेड, वो चार पांच दाने निकाले और कहा बेटा ये खा लो, तुम नहाए हो तो अछूत मुंह, मतलब निराहार मुंह, अभी एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो। इस समय हवाएं बहुत अटैक करती है ऐसे लोगों पर, ये जो सुपरनेचुरल पार होती हैं, ये खा लो, चूटा कर लो मुंह। अचानक दादी की वो बात स्ट्राइक की और ध्यान आया कि हाँ यार, मैं नहाया था और मैंने कुछ खाया नहीं था और मैं सो गया था। साहब वो दो दाने चने के खा के सो गया और डर, दिन भर की ट्रेनिंग की भयंकर थकान, यहाँ पसीने में लथपथ दौड़ के जाना, इन सब चीज़ों ने मिला के दिमाग पे कुछ ऐसा असर किया कि मैं नींद की आगोश में कब चला गया पता नहीं चला। सुबह उठा, फिर रूटीन हो गया, तीसरे दिन अपने कैंप चला गया, किसी को ये बात बताई नहीं। साल भर बाद, अब मैं, मुझे नहीं पता ये क्या था, संयोग था या तीर का तुक्का था या सच था पता नहीं, साल भर बाद मैं किसी ऐसे ही अपने भटकन में, अपनी यायावरी में किसी एक से मिला, किसी सिद्ध पुरुष से, और उसने पूरा वाकया उस रात का एज इट इज मेरे सामने बयान कर दिया, तो मुझे यकीन हुआ कि वो सच था, मेरा वहम नहीं था। तो ये मेरा पहला सामना था किसी ऐसी शक्ति से, और भी हुआ आगे, लेकिन ये मेरा पहला था। चलिए फिर मुलाकात होगी अगले पड़ाव पे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।